الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج هم نئی سورہ شروع کریں گے، سورہ دخان. سورہ دخان، اس کا نام اس کی آیت نمبر 10 میں بھی دخان مبین آیا، اس سے اس کا نام ہے، اور دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. الدخان کا لفظ قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں بھی آیا، وہاں پہ بھی اس کی بات ہم کر چکے ہیں. یہ مکی سورت ہے اور حوامیم کے سلسلے کی سورت ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 7 حوامیم ہیں، یعنی 7 سورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، جن میں ہم سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، زخرف یہ پڑھ چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورت دخان پڑھیں گے، اور اس کے بعد الجاثیہ اور احقاف رہ جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 الحوامیم مکہ میں نازل ہوئیں. تو یہ تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں. در المنصور میں یہ ہے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبور کے بدلے میں مجھے یہ حوامیم عطا کی گئیں، طوسین سے لے کے حوامیم تک. تو یہ میں نے بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں. اس صورت کی فضیلت کے بارے میں آپ بعض جگہ پر کچھ احادیث بھی پڑھیں گے، جن کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، مگر یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ تمام کی تمام احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ تمام کی تمام شدید ضعیف ہیں، شدید ضعیف. جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح اٹھ کے حامیم الدخان کی تلاوت کی اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بے حد ضعیف ہے. اسی طرح جس نے جمعے کی رات کو یہ تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی، یہ بھی بہت ضعیف حدیث ہے. اور اسی طرح مغرب کی نماز میں بھی حامیم پڑھنے کی بات آئی ہے اور بخشش کی بات اس کے ساتھ آئی ہے، لیکن یہ تمام کی تمام ضعیف روایات ہیں. تو آپ جب ایسی کوئی روایت پڑھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں شدید ضعف ہے. اس سورت کی ابتدا سورہ زخرف کی ابتدا سے مشابہ ہے، آپ اس میں جیسے پڑھ چکے ہیں. دونوں میں قرآن مجید کی عظمت کی بات آئی، اس کی شان کی بات آئی، اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں ہے. اور اس صورت میں خاص طور پہ ایک ڈیفرنٹ بات یہ ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یہ اس رات کی کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقدیر کے فیصلے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں، یہ اس میں آیا. اور قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ غفلت میں اور لہو و لعب میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو جگایا جائے، کہ تاکہ وہ روزے حساب کی تیاری کر لیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے، سچائی کے لیے یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ ان کو عذاب دکھا دیا جائے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ عذاب دیکھنے کے بعد جو ایمان لائے گا، پھر وہ ایمان بالغیب تھوڑی ہے، پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس ایمان لانے کا. اور کفار مکہ کی عبرت کے لیے فرعون اور اس کی قوم کی مثال دی گئی، اور کیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے، تو ان کا انجام کیا ہوا. یہ ہم خاص طور پہ آج کے لیسن میں ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद फिर कुरैश के कुफर और उनकी हठधर्मी का सबब जो था कि आखरत पे यकीन नहीं रखते थे, तो आखरत का फिर तफसील से बयान किया गया। ये मुख्तसर सूरतें हैं, ख़ास तौर पे सूरह दुखान छोटी सी सूरत है, छोटी छोटी आयतें हैं इसके अंदर, कोई 3 अल्फाज की, 4 अल्फाज की आयत एक है, और मुख्तसर यानी मक्की सूरतों का जैसे असलूब होता है उसी तरह आप इसको देखेंगे। और इस सूरत के आखिर में कुरान मजीद का जिक्र फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान में नाजिल किया, ताकि जो इसके पहले मुखातिब थे मक्का के लोग वो इसे नसीहत हासिल कर सकें। तो ये कुछ मुख्तसर तारुफ है इस सूरा का। और जैसे कि तमाम हवामीम में आप एक चीज कॉमन देखते हैं कि हामीम से शुरू होती हैं, और साथ साथ आप ये भी बात नोट करिए कि तमाम हवामीम में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जरूर आया, तो ये भी याद रखने की बात है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हामीम, हामीम हरूफ मुकत्तआत जिनका माना कोई भी नहीं जानता अल्लाह के सिवा। ये फिर क्यों कुरआने करीम में आए? क्या ये बेमानी हरूफ हैं? जी नहीं, ये बेमानी हरूफ नहीं, क्योंकि कुरआने करीम में कोई चीज़ भी बेमानी नहीं है। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि हमें इनका माना मालूम नहीं है, बताया नहीं गया, और इनको इसलिए लाया गया, एक रीज़न इनमें से ये है कि ये एक चैलेंज है कुरैश मक्का को कि वो ऐसा कलाम ले आए जो ऐसे हरूफ से ही बना हुआ है। और अगर वो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत बड़े अहलु ज़ुबान हैं और ये कलाम अल्लाह का नहीं है, तो फिर ऐसा कलाम तो उनको भी लेकर आ जाना चाहिए, तो वो ले आए ऐसा कलाम। दूसरा एक रीज़न ये भी दिया गया कि मुतवज्जे करने के लिए, जब हामीम कहा जाए दूसरा एकदम मुतवज्जे होता है कि क्या बात कही जा रही। और इतनी हद तक बात तो हम कह सकते हैं, लेकिन बाज़ किताबों में बहुत बहुत लंबी लंबी तफसीरें लिखी होंगी कि हा का माना ये, मीम का माना ये, लेकिन इनमें से किसी में भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, कोई प्रूफ नहीं है कि ये सिर्फ राय हो सकती है किसी की, मगर कहीं पे भी ऑथेंटिकली हमें नहीं पता चलता कि इन हरूफ का, जो जितना भी कुरान करीम में हरूफ मुकत्तआत आए हैं, ब्रोकन लेटर्स इस तरह जिनको अलग अलग करके हम पढ़ते हैं, कता करना ब्रेक करना ना, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे, हा और मीम पढ़ते हैं, तो इनके माने हम नहीं जानते, हमारी अकल इससे आजिज है। तो अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हो तो फिर इनका माना बताओ कि ये इनका माना क्या है, और कुरान इन्हीं हरूफ से बना है, तुम ये हरूफ जानते हो तो फिर इनसे ऐसा कराम तुम भी बना के ले आओ। ये एक तरह से प्रूफ है जिसके आगे वो लोग आजिज आ गए थे, ये प्रूफ है इस बात का कि ये अल्लाह ताला का ही कलाम है। वल किताब अल मुबीन, कसम है किताब मुबीन की, रोशन किताब की। किताब का मतलब यहाँ पे क्या है? कुरान। आप देखेंगे ज्यादातर जहां पर भी हरूफ मुकत्तआत आए हैं तो उनके साथ ही कुरान करीम की जरूर बात आई है, और इसमें अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इसकी क्या हिकमतें हैं। मगर जैसे कि पहले बात आई कि कुरान चैलेंज कर रहा है, और उसके बाद कुरान करीम की कसम खाई गई है, कसम भी उस चीज़ की अजमत पे दलील करती है कि ये कुरान कितनी अजीम किताब है, रोशन किताब है, क्लियर है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो वाजे हैं। कोई इसके बाद ये नहीं कह सकता कि हमें तो समझ ही नहीं आती, हमें तो पता ही नहीं है, बिल्कुल वाजे हैं इसमें हर चीज़, अहकामात बिल्कुल वाजे हैं, और कंफ्यूजन की इसके अंदर कोई बात नहीं है ऐसी। लिहाजा अब इसके बाद भी कोई इंसान कहे कि मैं तो समझ ही नहीं पाई और मुझे तो पता ही नहीं चला, तो ये झूठ होगा, क्योंकि ये कुरान मुबीन है, क्लियर है। हाँ, ये अलग बात है कि हम इसकी तरफ आना ही ना चाहें और इसको वैसी तवज्जो ना दें, वो अलग बात है, लेकिन इससे हमें कुरान करीम की अजमत का पता चलता है। बल्कि कुरान करीम में सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर तुम्हें चाहिए कि तुम खुशियाँ मना लो, क्योंकि ये उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिनको लोग जमा करते। हर चीज जिसको लोग जमा कर रहे हैं ये उससे ज्यादा बेहतर है। इसीलिए इसको हमें सबसे ज्यादा अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा इसको देना चाहिए। ये अल्लाह ताला का कलाम है और दुनिया में कोई कलाम ऐसा नहीं जिसको हम ये कह सकें कि इस वक्त वो ऐसे प्रिजर्व्ड है, अल्लाह की तरफ से आए वो कलाम, लेकिन वो ऐसे प्रिजर्व नहीं है जैसे कि ये कुरान है। तो ये एक वाहिद कलाम इस दुनिया में रह गया जो एज इट इज अल्लाह की तरफ से जैसे उतरा था, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत किया और उसी तरह हम तक पहुंचा है। तो इसकी अजमत हमारे नजदीक ऐसे ही होनी चाहिए जैसे अल्लाह ताला की अजमत, क्योंकि उसका कलाम है, ये उसकी बात है, उसके अल्फाज हैं और ये हमारा ईमान है। लिहाजा इसके साथ वक्त को कभी फालतू ना समझें और इसको जो वक्त आप देते हैं इसके ऊपर कभी मलाल ना करें कि हाय मेरा तो इतना टाइम तो कुरान के साथ ही लग जाता है, मेरे तो इतना वक्त तो मेरा इसमें ही चला जाता है, और उसके ऊपर कभी आप अफसोस कर रहे हो या कभी आपको ये हो रहा हो कि ये पता नहीं फालतू ही जा रहा है, देखो लोग तो इतना इतना कमा रहे हैं या वो लोग इतनी मज़े कर रहे हैं और मैं तो पता नहीं इसके साथ एक मुशक्क़त में पड़ गई हूँ। ये कुरान मुशक्क़त के लिए नहीं नाजिल किया गया जैसे सूरह तहा में अल्लाह ताला ने फरमाया। ये तो इंसान की इस दुनिया को भी संवार देता है और आखिरत को भी। इसकी कदरों मंजिलत हमने जानी नहीं। हाँ चूम के और रखा तो है खूबसूरत गिलाफों में, लेकिन इसकी कदर नहीं हमने जानी, क्योंकि जिस चीज़ की कदर होती है इंसान उसको जितना भी वक्त दे दे ना कभी उसके ऊपर रोता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन क्या बात है कि अगर हम वक्त दे भी रहे हैं तो उसके बाद भी हमें यही रहता है, हाय इतना वक्त मैंने निकाल दिया कुरान के लिए, मेरा तो इतना टाइम इसी में लग जाता है, मेरा तो आधा दिन इसी में सर्फ हो जाता है। जैसे कि पता नहीं हम कितनी मुशक्कत में पड़ गए, कितनी मुसीबत हमने ऊपर अपने ऊपर ले लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया ये कुरान हर उस चीज से बेहतर है जो लोग दुनिया से समेट रहे हैं, सब चीजों से। तो फिर जितना भी किसी को कुछ भी मिल रहा है ना, जो आपको मिल रहा है वो बेहतरीन है। इस चीज का हमें ईमान होना चाहिए अपने अंदर, इस चीज का यकीन होना चाहिए कि मैं बेस्ट जगह पे अपना वक्त लगा रही हूं, मेरा जो ये वक्त गुजरता है ना ये है बेस्ट। इसके अलावा सारी चीजों ने खत्म हो जाना। मलाउन कहा गया दुनिया को और दुनिया की हर चीज को, लानत जदा कहा गया सिवाय जिक्र करने वाले के, या जिक्र जो अल्लाह ताला का करते हैं और जिक्र की बातें अल्लाह ताला की बात, इसके अलावा सारी चीजें जो है वो अल्लाह की रहमत नहीं है उनके ऊपर। ये वो वक्त है जो मुबारक वक्त है, ये वो वक्त है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए कि अल्लाह तू शुक्र है कि तूने हमें इस काम के लिए बिठा दिया, और अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये मौका दे दिया। इसके ऊपर तो शुक्र से इंसान का दिल भर जाना चाहिए, ना कि इंसान कंप्लेंट करता रहे और इस चीज को समझता रहे कि मैं किधर मैं भी फंस गई हूं, कब ये खत्म होगा तो हमारी जान छूटे, ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, ये ना कदरी है इसकी। तो इस पे खुश हुआ करें, इस वक्त को इंजॉय किया करें, इसके ऊपर कहीं थक भी जाएं तो उसके ऊपर शिकायत ना करें, इसके ऊपर थक भी जाएं तो तब भी खुश हों कि शुक्र है। थकना तो और भी जगह पे था, खाना पकाते वकाते भी हम दावतें करते भी थक जाते हैं, शॉपिंग करके भी थक जाते हैं कहीं और, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। हाँ लेकिन इस मामले में क्यों हमारे लब पे शिकायत आए, शुक्र है थक भी गए तो अल्हम्दुलिल्लाह कि सही जगह पे थके, ऐसी जगह है कि यहाँ ये काम आ जाना है, बाकी सारा वक्त जो इधर उधर गुजरा वो सब बेकार है। तो ये तो किताबें मुबीन है, क्लियर किताब है, बड़ी कदरों मंजिलत वाली किताब है। बल्कि आप सोचें कि हमारे सलफ सालहीन का क्या कहना था इस कुरान के बारे में, हालांकि उन्होंने तो अपनी जिंदगियां खपा दी बस इस दीन की खिदमत के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, सुफियान सौरी जो हैं ताबेई हैं, कहते हैं काश मैं कुरान पर ही इक्तफा करता और किसी और इल्म में मसरूफ ना होता। हालांकि उनके जो दूसरे अलूम थे वो भी सारे दीन के ही थे, वो कोई साइंस या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे थे, फिर भी वो कहते हैं जैसे डिफरेंट और अलूम होते हैं इसके मुतालिक से, कई लोग ग्रामर के पीछे पड़ जाते हैं, वो ग्रामर ही बस ग्रामर सारी जिंदगी हो गई उनकी, कुरान की तरफ आए नहीं, ग्रामर ही समझते रहते। ठीक है बहुत अच्छी बात है अगर आप कुरान के लिए
इसको समझने के लिए सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुरान को छोड़ के नहीं, अभी तो मैं ग्रामर का कोर्स कर रही हूँ, तभी आप कुरान कब पढ़ेंगे? तो अगर आपको फालतू टाइम मिल जाए आप जरूर पढ़ें, लेकिन वो भी ये फरमाते हैं कि काश मैं कुरान पे ही इक्तफा करता। कई लोग हैं वो औलिया अल्लाह के किस्से लेके बैठे रहते हैं, उनकी कहानियां बस पढ़ रहे हैं, नहीं जी हमारा इससे ईमान बहुत बूस्ट अप होता है, ठीक है वो आप पढ़ लें, लेकिन कुरान को छोड़ के नहीं, और भी जितने उलूम है कुरान को छोड़ के नहीं, चाहे वो दीन के ही हैं। इसी तरह इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं, मुझे अपने उन औकात पे अफसोस है जो कुरान के फहम के बगैर मैंने गुजर, इसके फहम के बगैर मेरे गुजरे हैं, कि मैं इसके अंदर गौर व फिक्र करता इसकी, और हालांकि ये इमाम इब्ने तैमिया है सोचें, लेकिन वो भी अफसोस उन औकात पे कर रहे हैं जो कुरान के बगैर गुजरे, कि इसकी समझ में गुजार लेता, इन लोगों का तो सारा वक्त ही दीन के लिए गुजरा था। हमें कितना अफसोस होगा आखिरत में जो औकात हमने इस कुरान के फहम के बगैर गुजारे, बेशुमार औकात हैं वो, लेकिन चंद घंटे अगर हम इसके लिए बैठ जाते हैं तो हमें उन औकात पे आज अफसोस और वो रहता है कि हाय कितने लंबे हो गए, कितना लंबा हो गया, कितनी देर की क्लास हो गई, उनको अफसोस उन औकात के ऊपर है जो इसके बगैर गुजरे। हमें चूंकि कदर नहीं ना, तो इसलिए हमें इन औकात पे अफसोस होता है। इमाम अल हसन अल बसरी कहते हैं कि जो कुरान से जुड़ जाए अल्लाह ताला उसको गनी कर देता है, और जो कुरान को छोड़ दे अल्लाह ताला उसको फकर में मुब्तला कर देता है। किसी के बारे में आता है वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी अपने यानी फिरके को डिफेंड करने में ही गुजार दी, काश मैं उसको कुरान के लिए गुजार देता। यानी आप अपने फिरके को डिफेंड करने के लिए, चूंकि फिकही मसाइल होते हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा तवज्जो करते रहे, कुरान से दूर जो लम्हा गुजरेगा उस पर इंसान हसरत करेगा। तो ये बरकत है, ये तो सरासर बरकत है, और इस बरकत को समेटना हमारी खुश नसीबी है। जन्नून मिस्री से सवाल किया गया, अल्लाह से मोहब्बत कैसे होती है? तो फरमाया इल्म और कुरान के जरिए, इल्म के जरिए और कुरान के जरिए। अगर हम चाहते हैं ना हमें अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, अगर हम चाहते हैं हमारी आखरत संवर जाए, अगर हम चाहते हैं हम आखरत की तैयारी में लग जाए, अगर हम ये समझते हैं कि हमें भूल जाता है, हम फिर इस दुनिया की दौड़ में लग जाते हैं, क्या हो जाता है मुझे, ये अगर आपको अपने से शिकायत रहती है ना, तो कुरान की तरफ आइए। इमाम आमश फरमाते हैं मुझे कुरान के जरिए से बुलंदी मिली, ये कुरान ही है जो बुलंद करता है, और जो इसको छोड़ता है ये उसको पस्त कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान या तो तुम्हारे हक में हुज्जत बनेगा या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बनेगा। कयामत के दिन आइदर वो हमारे फेवर में होगा या हमारे अगेंस्ट होगा। अगेंस्ट क्यों होगा? हम तो कुरान पे ईमान रखते हैं, जो इसको छोड़ के जिंदगी गुजारे चाहे जितना मर्जी मुंह से बोलता रहे मेरा तो कुरान पे ईमान है, ये कुरान उसके खिलाफ शिकायत करेगा कि इसने मुझे छोड़े रखा। और जिसने इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया कि उसका दिन और रातें कुरान के साथ गुजरते थे, उसके हक में गवाही देगा उस दिन। क्या वो दिन होगा जब कुरान की गवाही कबूल की जाएगी, सुनी जाएगी, इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू होगी उस दिन, इतनी इसकी कदरों मंजिलत होगी उस दिन। आज तो शायद हमें इतनी लगती ही नहीं ना, किताब ही है ना। जब ये खड़ा होगा और ये बोलेगा तो इसकी सिफारिश सुनी जाएगी, ये वहां पे बड़ी कद्रो मंजिलत वाला होगा, और सुन के उसको एक्सेप्ट किया जाएगा इसकी सिफारिश। आप समझें कि कोई बड़ा आदमी, बहुत जिसके पास बड़ा योद्धा है, किसी मुल्क का सदर है, उसके साथ आप दोस्ती करने वाले हो जाएं, और आपको पता है कि इसकी बड़ी से है, मसलन है कि एक बड़े मुल्क का जिसकी दुनिया में धूम मची हो, दुनिया का बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क, आप अमरीका का कह लें, आप सदर आपका दोस्त बन जाए, तो आपको पता है कि भाई इसकी बात सब जगह सुनी जाएगी, कभी आप उससे दोस्ती को तोड़ना या छोड़ना गवारा करेंगे? कभी भी नहीं। कुरान को ऐसे समझे कि कयामत के दिन ये होगा जो बोलने वाला होगा, और इसके साथ जिसने दोस्ती बना ली तो उसकी सिफारिश करने के लिए उस दिन खड़ा हो जाएगा, और ऐसे नहीं कि इसको कहा जाएगा कि तू बैठ जा तेरी बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं, अल्लाह ताला इसकी बात सुनेगा क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। उसकी बात सुनी जाएगी। ये ऐसों में से नहीं होगा जो ये कहे कि उस दिन डर के बैठा हो, चुप बैठ जाए। नहीं, ये बोलेगा, झगड़ेगा। ये भी हदीस में आता है, झगड़ेगा उस बंदे के हक में जिसने इसको अपने साथ दुनिया में रखा, इसके साथ वक्त लगाया, ये उसके लिए झगड़ेगा, जन्नत में पहुंचा के छोड़ेगा। और क्या चाहिए हमें? फिर भी हम इसको इतनी तवज्जो ना दें तो वो बड़ी बदनसीबी है फिर हमारी। इसको छोड़ छोड़ के और चीजों में तवज्जो रखें, हमारा कितना टाइम इंटरनेट पे गुजरता है, चाहे वो किसी चीज में भी है, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे वो अब टिकटॉक पे है, चाहे इंस्टाग्राम पे है, किसी जगह पे भी जिसमें हम खरीदारियां कर रहे हैं या बातें पढ़ रहे हैं या किसी को दोस्त अहबाब से गपशप कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, उस वक्त के वो ही वक्त, या हम गेम्स खेल रहे हैं, उसी वक्त को कहाँ पे तोला जाएगा कयामत के दिन? और इस वक्त को कहाँ तोला जाएगा जो आज आप इस कुरान के साथ लगाने वाले? खुद मुकाबला करके देख लीजिए। इन्ना अनजलनाहु फी लैलत मुबारका, ये इतनी शान और मंजिलत वाला कलाम है कि अल्लाह ताला ने इसके लिए ऐसी रात चुनी जो रात भी बाबरकत बन गई इस कलाम की वजह से। ऐसे नहीं कि वो रात में बरकत थी, मगर इस कलाम को चूंकि उस रात में नाजिल फरमाया गया तो वो रात भी बरकत वाली बन गई। जो फरिश्ता इसको लेकर आया, वो तमाम फरिश्तों का सरदार, जिस नबी पे ये कलाम उतरा वो तमाम अंबिया के सरदार, जिस रात में उतरा वो बाबरकत, जिस महीने में उतरा वो बाबरकत। आप मुझे बताएं, जो जगह अल्लाह ताला ने इसके लिए मुंतखब की वो जगह बाबरकत हो गई। जिस सीने को अल्लाह ताला इसके लिए मुंतखब कर ले, वो सीना कितना बाबरकत हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इसको एक ऐसी रात में उतारा जो बड़ी बाबरकत, यानी बाबरकत मतलब क्या, कद्रो मंजिलत वाली, खैर वाली। और वो कौन सी रात है और उसमें क्या बरकत है, अब इसको यहां पे बयान नहीं किया गया। लेकिन आप देखें, कुरआने करीम की जो तफसीर है ना, सबसे पहले कुरआन से ही की जाती है। एक जगह जिस जिसकी यहाँ पे तफसीर नहीं की गई, आपको उसकी तफसीर कुरआने करीम में ही दूसरी जगह पे मिल जाएगी। इसी वजह से वही तफासीर सबसे बेहतरीन होती हैं, जिनमें सबसे पहले कुरआन की कुरआन से तफसीर की जाती है, उसके बाद कुरआन की हदीस से तफसीर की जाती है। तो कोई आयत भी आपको उसमें समझ नहीं आ रही कि भाई इसका माना क्या है, तो इसकी दूसरी जगह यकीनन कहीं तफसीर आई है। तो आप बताइए कि आपने कहाँ पे इसको पढ़ा है कि ये कुरान किस रात में नाजिल हुआ? इन्ना अनज़लनाहू फी लैलत मुबारक का यहाँ पे कहा गया, तो आप समझते हैं कि कहीं और इस लैला को बयान किया गया कि वो कौन सी रात है? जी हाँ, सूरह कदर में, इन्ना अनज़लनाहू फी लैलतिल कदर, ठीक है। अब हमने इसको लैलतुल कदर में नाजिल किया, अब लैलतुल कदर कब आती है, हमें कैसे पता चलेगा साल में कौन सी रात है जो लैलतुल कदर है? क्या वो 15 शाबान की रात है, या वो रमजान के आखिरी अशरे की रात है, या वो मुहर्रम में कोई रात है, या कोई सफर में रात है, या कोई जिलहज में रात है? कौन सी रात है जिसमें ये कुरान नाजिल हुआ? तो हमें उसकी भी तफसीर मिल जाती है सूरह बकरा में, शहर रमजान अल्लदी उन्जिला फीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो है जिसमें ये कुरआन नाजिल हुआ। तो कन्फ्यूजन दूर हो गई, कुरआन ने कुरआन से ही तफसीर की कि वो महीना कौन सा है, रमजान का। इसका मतलब लैला तो मुबारका जो है वो रमजान में है। और अब हम हदीस की तरफ जब आते हैं तो तब हमें पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमा दिया कि ये रात आप जिसमें के कुरान नाजिल हुआ, ये रमजान के आखिरी अशरे की रात है। और जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहिम अलैहि सलाम के सहीफे जो हैं वो रमजान की पहली रात को उतरे, तौरात 6 को, इंजील 14 को, और जबूर 19वीं को, और रमजान की 25वीं रात को ये कुरान उतरा। यानी उस इस हदीस में 25वीं रात फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये भी फरमाया कि ये 27वीं या 29वीं हो सकती है जो लैलतुल कदर है। यानी एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है कि कौन सी एग्जैक्टली रात है, इसीलिए उलमा कहते हैं ये रात बदलती रहती है हर साल में, लेकिन जिस साल में कुरान नाजिल हुआ है वो 25वीं रात थी। अब हमें इससे पता चला कि सुबहान अल्लाह, रमज़ान का महीना कितना कोई मुबारक महीना होगा कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम जो कलाम है वो इसी महीने में नाजिल फरमाए। अब इसको कहा गया कि ये मुबारक रात है, इसकी क्या बरकत है? बरकत का माना भी आपको इससे समझ आ जाएगा कि इसकी बरकत क्या है। वो ये जिस तरह के हमें अपनी उसमें सूरह कदर में ही पता चलता है कि ये खैरुम मिन अल्फी शहर है, बेहतरीन है, हजार महीनों से ज्यादा बेहतर है एक रात, या इसको बरकत कहते हैं। यानी बरकत क्या होती है? यानी थोड़ी सी चीज में इतनी ज्यादा खैर हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। है एक रात, वही जो लो 8-10 घंटे की होगी, लेकिन उसके अंदर जो बरकत है उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मोर देन 83 ईयर्स की इबादत, एक रात की इबादत इतनी ज्यादा खैर लाने वाली है, इतना ज्यादा अजर के बायस बनने वाली है। मोर देन 83 ईयर्स, 83 ईयर 4 मंथ बनते हैं 1000 महीने, उससे ज्यादा खैर, उससे भी ज्यादा बेहतर क्या, कितनी खैर है उसके अंदर? अब उलमा कहते हैं इसके ऊपर हम नहीं बता सकते। 1000 महीने से ज्यादा मतलब 2000 महीनों के बराबर, या 10,000 महीनों के बराबर, या 1 लाख महीनों के बराबर, हम नहीं बता सकते। मगर ये पता चल गया कि उससे भी ज्यादा खैर, अगर तुम एक रात में इबादत करो, 83 ईयर्स तुम इबादत करते रहो, तो 83 ईयर्स को इबादत कर नहीं सकता, लेकिन चलो किसी ने कर ली, उससे भी ज्यादा बढ़ के ये एक रात है। तो जिसको ये एक रात मिल जाए, सोचें कि वो कितना खुश नसीब है, कितनी बड़ी बरकत है इसमें। और फिर इसकी और बरकत क्या है? कोई और भी है जी? इसके अंदर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरते हैं, वैसे तो वो पैगंबरों के ऊपर उतरते थे, उनके ऊपर वही लेकर आते थे, लेकिन वैसे नहीं आते सारा साल, लेकिन इस रात में वो उतरते हैं फरिश्तों की एक फौज के साथ। इतने फरिश्ते उतरते हैं जितने जमीन पे संग्रेजे, जितने पत्थर हैं जमीन पे इतने फरिश्ते उतरते हैं। सुबहान अल्लाह, कि ये रात फरिश्तों से भर जाती है। और क्या है, और इसकी बरकत क्या है? सलामती ही सलामती है इसमें, खैर ही खैर है इसके अंदर, इतनी सलामती है, फजर के वक्त तक सलामती ही सलामती है इस रात के अंदर। कितनी प्यारी रात है ये, एक रात तो यानी क्वीन है तमाम रातों की, जितनी पूरे साल की रातें, इतनी जबरदस्त नहीं है जितनी कि ये एक रात है, कि इस एक रात की खैर कोई समेट ले तो उसके तो भाग जाग गए। इसीलिए आप सरासर हमने फरमाया जो इससे महरूम रहा वो हर किस्म की खैर से, भलाई से महरूम रहा, यानी जिसने इसको इग्नोर किया, इसको कुछ समझा ही नहीं, इसमें इसने इबादत की कोशिश ही नहीं की, वो तो हर खैर से ही महरूम हो गया। जो पड़ा सोता रहा, डजेंट केयर। और इस रात की खास इबादत क्या है? कयामुल लैल, कयाम करना। चलो जो कयाम नहीं कर सकता किसी वजह से, तो कोई भी इबादत करे इसके अंदर, कुरान पढ़ रहा है, वो तस्बीहात कर रहा है, इस्तिगफार कर रहा है, सभी अच्छा है। लेकिन आप सर ने फरमाया जिसने इस रात में लैलतुल कदर में ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से कयाम किया, अल्लाह ताला इसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतकाफ फरमाते थे ताकि इन सारी रातों में कहीं कोई लैलतुल कदर है ताकि वो मिस ना हो जाए। और ये भी फरमा दिया अगर कोई कमजोर हो, नहीं सारी 10 रातें में इबादत कर सकता, तो कम अज कम वो आखिरी 7 रातों में इबादत करें। 7 रातें जरूरी है कि आप उसके अंदर इबादत करें। तो ये कुरान अल्लाह ताला ने ऐसी मुबारक रात में नाजिल फरमाया है। सुबहान अल्लाह, इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, बेशक हम हैं वॉर्न करने वाले, डराने वाले। किस लिए नाजिल किया गया, इसका मकसद क्या है, क्यों ये आया कुरान? आप और मैं शायद कोई और मकसद बताते हो, लेकिन ये सब आपके लिए आया। देखें एक एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलेंगी, बहुत अच्छी बात है, जरूर आपको मिलेंगी। हम कहते हैं कि जी ये बड़ा घर में होना चाहिए, घर में रखा हुआ है, और इसलिए भी ये कुरान आया है ताकि जब हम नए घर खरीदें ना, तो फिर हम इसकी एक ख़त्म करा लिया करें इसका घर में। या आप देखें ना, जो फौत हो जाते हैं तो फिर भी कुरान चाहिए ना कि भाई हम उसके बाद फिर सारों को बुलाएं, एक पार्टी करें, उसमें भी सारों को बिठाएं और वो उनसे कुरान पढ़वाएं, एक एक बरसी कर लें हम, पार्टी तो नहीं लेकिन एक यानी उनको सवाब पहुंचाने के लिए हमने कर लिया, या फिर हमने एक यानी कोई बड़ी बड़ा आपने बड़ा खैर किया, बड़ी मोहब्बत है हमें अपने फौजान, तो बरसी उनकी करनी है तो उस पर फिर क्या करेंगे, फिर वो कुरान पढ़ लिया। चलो कोई बीमार हो जाता है, बहुत ही बीमार है, अब वो उसकी जान निकलने वाली है तो उसके लिए कुरान है। अब मेरे और आपके नज़दीक शायद ये डेफिनेशन हो कि क्या मकसद है इसका, हम ये जवाब दें, क्योंकि हम ये ऐसा ही समझते हैं ना, हमारे नज़दीक तो कुरान इसी के लिए उतरा है ना, लेकिन असल में किस लिए उतरा है, अल्लाह ताला ने क्या इसका मकसद बयान फरमाया। असल तो वही बात है ना जो अल्लाह ताला ने जिसके लिए ये उतारने वाला है वही बताएगा ना, क्या मकसद है इसका, क्यों उसने उतारा। इन्ना कुन्ना मुंदरीन, बेशक हम वोन करने वाले, ताकि लोगों को खबरदार कर ले कि किस चीज से, आखरत से, आखरत के दिन की आ जाने से, उसकी तैयारी से, उस इससे वॉर्न कर दिया जाए कि लोगों तुम्हें उठना है, हिसाब किताब देना है, यहाँ पे मुस्तकिल नहीं रहना, लोगों जागो, गफलत से उठो, समझ जाओ। और वाकई जब हम कुरान करीम इस तरह समझते हैं डेप्थ में, वाकई लगता है ना, इंतजार होता है ना। लेकिन जब हम बस ऐसे बगैर समझे कुरान पे कुरान खत्म कर रहे हैं, तो कोई इंतजार होता है, कोई हमें वार्निंग मिलती है, या हमें कोई उसकी वजह से हम कोई अपनी ज़िंदगी दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अब जितने लोग माशाल्लाह कोर्स में आते हैं फिर उसके बाद कहते हैं हमारी ज़िंदगियां बदल गई, उससे पहले भी तो कुरान पढ़ते ही थे बचपन से, बल्कि कितनी दफ़ा ख़त्म किया, और कुरान को ख़त्म करने की भी एक बड़ी सेलिब्रेशन की जाती है, वो भी की गई उनकी कि भाई जी बच्चे ने कुरान ख़त्म कर लिया, लेकिन कितना इंतज़ार हुआ, कितनी वार्निंग्स मिली, कितनी ज़िंदगी दुरुस्त हुई। इसलिए कि इसको बिना सोचे समझे पढ़ते जाएं तो वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, सवाब जरूर मिलेगा, मकसद पूरा नहीं होगा। मकसद यही है कि आपको वार्निंग मिले, क्योंकि ये वार्नर है, समझ लें, ये इंतजार के लिए आया है कि तुम अपने आप को सही कर लो, सीधे हो जाओ। लोगों इस रविश पे चलते रहे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। तो ये कितना हमारा हमदर्द है ना, ये कुरान, ये तो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है ना। अर रहमान अल्लमल कुरान, सूरह रहमान पढ़ने का शौक तो है, सूरह रहमान कई लोगों की फेवरेट सूरह है, लेकिन रहमान की सबसे बड़ी रहमत इंसान के ऊपर क्या है कि उसने कुरान सिखा दिया, ये बात नहीं समझ आई हमें। सूरह रहमान पढ़ते रहे मगर इसी को ना समझे कि उसकी रहमत की सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन, इजहार किस चीज़ से होता है कि उसने कुरान दे दिया। हम तो सीने से लगाएं इस कुरान को कि ये हमारा कितना खैर हुआ है, अल्लाह ताला तूने हमें हमारे पर कितनी बड़ी रहमत कर दी ये नाजिल करते, वरना मुझे आपको क्या पता होना चाहिए था कि मरने के बाद क्या होना है, क्या वहाँ पे मंजिलें हैं, जन्नत क्या, जहन्नुम क्या, हिसाब किताब क्या, इस ज़िंदगी को सुधारना कैसे, अल्लाह को राज़ी कैसे करना है, अल्लाह ताला कौन सी चीज़ें हैं जो तुझे नाराज़ करती हैं, अल्लाह तू हमसे क्या चाहता है, तू हमारी ज़िंदगी कैसी देखना चाहता है, हम किस डगर पे चलें, सिराते मुस्तकीम क्या है, कहाँ पता चलता। तो ये उसकी कितनी बड़ी रहमत है कि हमें इस सरप्राइज में नहीं रखा, हम सरप्राइज हो जाते उस दिन, हाय हाय हमें तो पता ही नहीं था, उसने सब कुछ बता दिया। इसके बाद फिर किसी के लिए कोई एक्सक्यूज बाकी नहीं छोड़ा गया कि कोई एक्सक्यूज बना ले कि हमें पता नहीं था। अब जो फेल होता है वहां पे वो अपने आप को मलामत करे, जिसके पास कुरान है और उसने उसकी तरफ तवज्जो ना की, और उस दिन जाके अगर कुछ भुगतना पड़ गया तो फिर अपने आप पे ही रोए, अपने आप को ही कोसे, क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो उसके पास ये कलाम भेज दिया था, उसके घर में था, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, चांसेस आए उसके सामने, मगर उसने उनसे फायदा ना उठाया और हमेशा मुंह मोड़ ही के रखा, नजर दूसरी तरफ कर ली। ये फ्लायर तो पहले भी आता रहता है, इनका तो बस एक ही काम है, बस ये तो असर हर वक्त यही कहते रहते हैं छोड़ो इस चीज को, अभी तो हम बहुत बिजी हैं, अभी हमारे इतने काम है, कोई हमारे पास टाइम है, इन फारिग औरतों का तो टाइम ही बहुत है, इनको करने दो, यही कहते कहते जिंदगी ना गुजर जाए कहीं। फिर उसके बाद पछताओगे कि ये इतनी बड़ी रहमत आई मेरे पास और मैंने क्या किया। ये तो रहमत है, ये मुसीबत नहीं है खुदा के लिए। डरते हैं इससे कि हाय कहीं ये ना हो कि इसको पढ़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत सारी औरतों को क्या चीज मना करती, क्या चीज रोकती है कुरान की तरफ आने से, पता नहीं अगर हमने कुरान पढ़ लिया ना हमें भी इनकी तरह ही बनना पड़ेगा, हिजाब सर पे लेने पड़ेंगे और ये तो कहते हैं हिजाब, पता नहीं उनको तो सिर्फ यही लगता है कुरान में पढ़ते ही पता नहीं हिजाब ही लेना पड़ जाएगा, हमें मुश्किल पड़ जाएगी, पर्दा करना पड़ जाएगा, वो हमने करना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है, मर्दों की ये है हमारे पास तो टाइम ही नहीं, किसी का कोई बहाना किसी का कोई, लेकिन अंदर ही कोई रुकावट होती है कि इंसान इस कुरान की तरफ नहीं आता। वो बाहर रुकावटें नहीं है, हम बाहर ढूंढते हैं ना, बाहर नहीं है, हमारे अंदर होती है, हम नहीं आना चाहते, हमारे अंदर ही ये शैतान डालता है ऐसे वसवसे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने सूरह आराफ खत्म हो रही है तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो, गौर से सुनो और क्या कहो, शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाओ, शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाओ। क्यों? इसलिए क्योंकि शैतान इसी के रास्ते में रुकावट डालेगा, इसी की तरफ आने देना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि ये मुनजिर है, ये इंतजार करता है, ये जब इनको डराएगा तो ये डर जाएंगे और अपनी आखिरत की तैयारी के लिए दौड़ पड़ेंगे, इन ये अपनी जिंदगियां बदल लेंगे। ये कहां उसको कबूल है, वो तो इतनी मेहनत कर रहा है कि भूले रहो आखरत को, यही जिंदगी है, खाओ पियो और मजा करो, जिंदगी एक दफा मिलती है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस। इस धोखे में ना आए, कुरान आंखें खोलता है, ये जिंदगी मजे उड़ाने के लिए नहीं मिली, ये जिंदगी एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के लिए नहीं मिली, ये तो आखिरत की तैयारी के लिए मिली है। वो जन्नत है जो है एंटरटेनमेंट की जगह, एंजॉयमेंट की जगह, फन की जगह, जो कभी खत्म ना होगा, जिसने इस दुनिया को समझ लिया कि ये मजे की जगह है, वो धोखे में रहा, ये कुरान मेरे मजे खत्म कर देगा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। फिर उस दिन कयामत के दिन खुद को ही मलामत करे, किसी और को ना करे, क्योंकि उसके पास मौके थे लेकिन उसने उनसे फायदा ना उठाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये इंतजार करने के लिए है। अब इंतजार भी हमें सच बताऊं तो अच्छा नहीं लगता, कोई हमें वार्निंग दे रहा हो ना, देखो बच जाओ बच जाओ, उस दिन से बच जाओ, उस दिन के अजाबों से बच जाओ, वो बड़ा मुश्किल दिन है, अल्लाह ताला बार बार डरा रहा है। आखिरी आयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी वो भी तो यही है ना, डर जाओ उस दिन से जिस दिन तुम जमा किए जाओ, वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें वापस लौटना है। लास्ट पैगाम जो इंसानियत को आया वो भी तो यही था, लेकिन हम कहाँ सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम मीठी नींद सोना चाहते हैं, हम इतने गहरे सोए में, जैसे होता है ना एक बंदा डीप स्लीप में, आप लाइटें जलाएं उसको अच्छा लगता है, कहता बंद करो लाइट, क्यों? तुम्हें उठाना चाहते हैं, उठ जाओ, वो कहता नहीं बंद करो लाइट, वो लाइट में आना नहीं चाहता, सोया रहना चाहता है। हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है, ये कुरान हमें रोशनी में लाना चाहता है लेकिन हम सोए रहना चाहते हैं, अंधेरों में पड़े रहना चाहते हैं, हम गहरी नींद सो रहे हैं, हमें कोई रोशनी भी पसंद नहीं आ रही। तो ये इंतजार करता है, ये तो जगा रहा है उस खतरे से जो आगे है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पे यही तो फरमाया था सबसे पहले कि लोगो डर जाओ उस दिन से, लोगो ऐसा दिन आने वाला। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, ये वो रात है जिसमें फैसला किया जाता है हर अम्रे हकीम का। एक तो ये रात की बात की जा रही है कि उसी रात की जो लैलत मुबारक है, और ये कौन सी रात है, अभी हमने इसके ऊपर दलील कुरान से तलाश की तो पता चला वो लैलतुल कद्र है जो रमजान की रात है। पहले तो इसके ऊपर कि फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर मजबूत अमर का फैसला इस रात में होता है, इसका मतलब क्या, मतलब कि वो लैलतुल कद्र है, कुरान से हमें ये दलील मिल गई कि वो कोई और रात नहीं है, बल्कि वो लैलतुल कदर ही है। अब ये कहना कि 15 शाबान वो रात है जिसके अंदर तकदीर के फैसले होते हैं, ये बिल्कुल बेदलील बात है, इसलिए कि कुरान की नस, कुरान का प्रूफ है कि वो शाबान की रात नहीं है, जिसको हम शब रात कहते हैं अपने अल्फाज में, अलग है शब रात से कोई उसका ताल्लुक, ऐसा कोई रात की ऐसी बात ही नहीं की गई। तो ये एक जहन से निकाल दे, बल्कि जो भी लोग अहादीस पेश करते हैं उस सिलसिले में, वो सारी इस कदर ज़यीफ़ हैं, इस कदर ज़यीफ़ अहादीस हैं। और ये उसके बाद जो उलमा ने कंक्लूड किया, उन्होंने कहा ये 15 शाबान की रात जो है ये ऐसे ही है जैसे बाकी सारी रातें, यानी बिल्कुल नॉर्मल रात है। इसके अंदर अगर कोई समझता है कि नहीं यही तकदीर को वाली रात है, उसने कुरान की देखे नस के खिलाफ बात की ना। कुरान क्या कह रहा है, फीहा युफराकु कुल्लू अम्रिन हकीम। या तो आप ये कहें कि ये नहीं, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, देखें यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ उसी में तकदीरों के फैसले किए जाते हैं, ऐसे ही पता चल रहा है ना, कुरान आपके सामने है। या तो आप ये कह दें कि कुरान ही नाजिल हुआ 15 शाबान को, ठीक है, कुरान ही 15 शाबान को नाजिल हुआ तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो आपने ये भी कुरान की साफ आयत शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान इसकी नफी कर दी ना। अगर आप मानते हैं कि रमजान में ही नाजिल हुआ, तो यहाँ पे आता है वही रात है जिसके अंदर कुरान भी नाजिल हुआ और उसमें तकदीर का फैसला भी होता है। अब ये कहने वाले कि नहीं उस रात तकदीर का फैसला हो रहा है, तो फिर ये मुझे बताएं ये क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी दलील हमें नहीं मिलती। हाँ, एक मुफस्सिर को इसके ऊपर गलती लगी थी और उसके बाद वहां से लोगों ने ले लिया, और उसके बाद आगे से आगे फिर नहीं, कुरान जी नहीं, तकदीर के फैसले इसके अंदर होते हैं, हालांकि जमहूर का, मेजॉरिटी का यही फैसला है कि ये, यहां से हमें पता चलता है कि ये लैलतुल कदर ही है। इसमें क्या होता है, फैसले सारे फैसले अल्लाह के हुक्म से सादिर हो जाते हैं। अब यहाँ पे अमर का मतलब क्या है, कुल्लु अमरिन हकीम। एक मतलब लिया गया कुरान, क्योंकि पीछे कुरान की बात आई कि इसमें फैसला किया जाता है हर मजबूत बात का, हकीम बात का, कुरान का, यानी इसका फैसला किया जाता है, ये उतारा गया है, इसको इसके जरिए फैसला होता है। और दूसरा जो है कि यानी इसमें फैसले किए जाते हैं, जो कि ज्यादा ऑथेंटिक बात है कि इसमें फैसले किए जाते हैं तकदीर के, ठीक है, फैसले उतारे जाते हैं तकदीर के। अब तकदीर, एक तकदीर वो है जो इंसान की, अल्लाह ताला ने जिस वक़्त ये जमीन व आसमान भी कायम नहीं हुए थे, उस वक़्त अभी यानी पैदा भी नहीं हुए थे ये सब, के हदीस में जैसे आता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तखलीक से भी 50,000 साल पहले मखलूकात की तकदीरें लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पे था और वो लोहे महफूज में लिखी हुई है, वो रिकॉर्ड मौजूद है, अकुल्ला शैन अहसैनाहू फी किताब फी इमाम मुबीन। तो वो सारी चीज़ें वहां पर गिन के लिखी हुई हर चीज़, और ये भी हमें पता चलता है अल्लाह ताला ने कलम को सबसे पहले पैदा किया और उसको कहा लिख, उसने कहा क्या लिखूं, क़यामत तक का इल्म लिख दे, सब चीज़ ये अल्लाह ताला का इल्म है। फिर एक तकदीर का हमें पता चलता है कि जब रहमे मादर में बच्चा अभी तखलीक पा रहा होता है, तो फरिश्ता पूछता है हर स्टेज पे पूछता है कि अल्लाह ताला इससे कि ये मतलब है कि बड़ा होगा नहीं होगा, इसकी उम्र क्या होगी, इसका रिस्क क्या होगा, मर्द होगा, औरत होगा, खुशबख्त होगा या बदबख्त होगा, ये फरिश्ता पूछता है, और फिर वो भी तकदीर लिख दी जाती है। अब यहाँ पे कौन सी तकदीर है जो इस रात के अंदर उतारी जाती है, तो ये पता चलता है हमें कि ये वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों को दे दी जाती है, क्योंकि फरिश्तों के पास भी तकदीर का इल्म नहीं है, तो उनको इस रात में ये फैसला सारा दे दिया जाता है कि अगले साल इस रात तक, लैलतुल कदर तक के सारे फैसले उनके हवाले कर दिए जाते हैं। वो कौन से फैसले, अमरिन हकीम, हकीम का एक मतलब है हिकमत, हिकमत वाले, ये सारे फैसले हिकमत वाले हैं, ये सारे फैसले अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं।
और दूसरा मुहकम के मानों में हकीम, मजबूत यानी पक्की बात, पक्का, ये अब नहीं बदलेगी, ये पक्की बात है। अब ये कौन से फैसले होते हैं? देखिए, इंसान के हक में जितने भी बातें हैं ना, कि किसने मर जाना है इस साल, किसने पैदा होना है, किसकी शादी होनी है, किसको कितना रिस्क मिलना है, बारिशें कितनी बरसनी है, जलजले आने हैं कि तूफान आने हैं कि क्या होना है, किस कौम ने ऊपर जाना है, किस कौम का जवाल आ जाना है, किस बंदे को हिदायत मिलनी है, किसने गुमराह हो जाना है, किसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाना है, किसके साथ कोई बीमारी पेश आ जाएगी, किसके साथ कोई और हादसा पेश आ जाएगा, किसके ऊपर कौन सी आजमाइश आ जानी है, किसके ऊपर के ऊपर रिस्क की फरवानी है, सब फैसले कितनी इंपॉर्टेंट रात है ना, ये सारे फैसले एग्जीक्यूशन के लिए फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। बल्कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि बंदा चल फिर रहा होता है, अल्लाह अकबर, वो चल फिर रहा होता है और उसको पता नहीं होता कि उसका मौत का फैसला दे दिया गया। यानी जैसे समझ लें कि एक कैदी को सजाए मौत सुना दी गई हो ना, तो वो तो सजा होती है, लेकिन खैर उस तरह से आपको एक मिसाल देने के लिए, सजाए मौत सुना दी गई हो, वो घूम फिर रहा है, उसको पता ही नहीं उसको सजाए मौत सुना दी गई। इसी तरह एक बंदा है, उसकी मौत का परवाना दे दिया गया, फैसला दे दिया गया, फरिश्तों के हाथों में दे दिया गया, अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि साल को कौन सा दिन होगा या कौन सा मिनट, कौन सा सेकेंड होगा जिस वक्त उसकी जान ली जाएगी, लेकिन वो दे दिया जाता है, उसको पता ही नहीं होता, वो कभी पार्टियां कर रहा है, कभी वो गफलत के अंदर पड़ा हुआ है, कभी वो म्यूजिक सुन रहा है, कभी वो हंस बोल रहा है, खेल रहा है और अपने ऐसे मशगूलों में लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं कि क्या चीज आने वाली है। अल्लाह हू अकबर, ये फैसला दे दिया जाता। अल्लाह अकबर, अमरन मिन अंदिना, ये अमर, ये हुक्म, ये हमारी तरफ से, ये तकदीर का फैसला हमारी तरफ से। और अगर इसे कुरान मुराद लिया जाता है तो कुरान का हर फैसला हिकमत पे मबनी है और पक्का है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हो गया इस रात में। अगर अमर से हमने कुरान मुराद दिया तो मिन अंदिना, हमारी तरफ से, और अगर तकदीर है तो ये भी अमर से मुराद, अगर तकदीर लिया है तो ये भी मिन अंदिना, हमारी तरफ से। इस फैसले में किसी का कोई बस नहीं है। हाँ, आप सरसर ने फरमाया कि दुआ जो है वो तकदीर को बदल देती है, अल्लाह ताला कुछ चाहे, कुल्लू यौमिन हुआ फी शान, अल्लाह ताला चाहे जिसके ऊपर जो चीज को बदल दे, अल्लाह ताला ने ही तकदीर का भी लिखा है ना, जिसके लिए जो चीज बदल दे अल्लाह ताला ने वो फैसला लिखा है, अल्लाह ताला जब चाहे उसको बदल दे, या पहले से ही बदलाओ कि ये बंदा दुआ करेगा तो उसकी वजह से ये चीज बदल जाएगी, इस तरह सिला रहमी करने से उम्र में बरकत हो जाती, बाज कहते हैं, और बाज कहते हैं उलमा कहते हैं कि उम्र में इजाफा हो जाता है। तो ये सारे अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर के फैसले हैं, तो फिर क्या हमें होना चाहिए, तकदीर के हर फैसले पे क्या होना चाहिए? जब कह दिया गया अमर मिन इंदीना, ये उसने कर दिया, ऐसा हो गया, ये ना होता, वो ना होता, तो ये ना होता, ये कह सकते हैं फिर, या किसी फैसले के ऊपर नाराज हो जाए, हमें मेरे साथ अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया, जो अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर क्या कहना, रदीतु बिल्लाहि रब्बुम, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हुआ। ये पता है इतना बड़ा कलमा है ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद नबिया, ये इतना बड़ा कलमा है, ये जो हम सुबह को 3 दफा पढ़ते हैं और शाम को, कि जो बंदा ये पढ़ेगा, यानी सिदके दिल से, जाहिर है जिसको वाकई अल्लाह के हर फैसले पे और हर अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर वो राजी है। ये कुरान में सारे हुक्म किसकी तरफ से, अमरन से अगर मुराद कुरान ले, मिन इंदिना, हर फैसला हर हुक्म इसमें किसकी तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से है, मौलवियों ने तो नहीं बना दिए, नहीं, इसके अंदर खुद पढ़ के देख लो, ये अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात है। तो फिर इनके ऊपर नाराज होना, इनके ऊपर गिले शिकवे करना, इनके ऊपर राजी ना रहना, दिल में तंगी महसूस करना, हाय हाय ये क्यों आ गया, ये क्यों मेरे लिए मुश्किल हो गई, मुसीबत पड़ गई, ये अल्लाह के हुक्म के ऊपर मुसीबत कहना, क्या ये अल्लाह के फैसलों पे राजी होना, अल्लाह के अहकाम पे राजी होना, खुश होना, दिल से भी खुश हो। बाज दफा हम अमल कर रहे होते हैं, अमल भी करने तक पहुंच जाते, लेकिन दिल तब भी राजी नहीं होता, दिल में यही होता है, हाय बाकी लोग कितने मजे कर रहे हैं,
हम मुसलमानों के लिए तो कितनी मुश्किल है कि हमें ये भी करना पड़ता है, रोजा भी रखना है, हमने 5 दफा नमाज भी पढ़नी है, हमने हलाल हराम की भी चीजें देखनी। देखो इनके कितने मजे, आराम से कमाइयां कर रहे हैं, सूद भी खा रहे हैं और वो लॉटरी भी कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और देखो पार्टी टाइम कितना अच्छा करते हैं और कितने मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके तो मजे ही मजे हैं ना, मुसीबत तो हमारी है। नहीं, हमारी मुसीबत नहीं, हम अल्लाह तेरे हर फैसले पे राजी हैं, तेरा हर हुक्म पे हम राजी हैं। ये सारे अहकाम जो अल्लाह ताला ने दिए इन पे राजी होना, तब आप ये मुंह से कह सकते हैं रदी तो बिल्लाही रब्बन, वरना तो झूठ है। बस एक रटा रटा है कलमा रदी तो बिल्लाही रब्बन। अल्लाह ताला उस बंदे को उस दिन कयामत के दिन राजी कर देगा जो ये कलमा कहता है, यानी सिदके दिल से वाकई वो राजी होता है। ठीक है, आप सरसर ने फरमाया मैं उस बंदे को हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर जाऊंगा जो ये कलमा कहता है, इतना जबरदस्त है। लेकिन क्या ये वाकई दिल से कह रहे हैं, सच्चाई है इसके अंदर कि मैं राजी हूं? वाकई आपका दिल राजी है, खुश है आप? तकदीर का जो फैसला होता है उस पर खुश है? अल्लाह यही मेरी तकदीर में तूने लिखा था, अल्लाह तू जिस पे राजी मैं भी राजी। कभी नाराज नहीं होना, अल्लाह तूने ये क्यों कर दिया, तू ऐसा मेरे साथ ही करना था तूने, ये क्यों हो गया, मेरे ऊपर ही बीमारी आनी थी, बाकी सब अच्छे भले फिर रहे, मैंने ऐसा क्या कर दिया, आए मेरे प्यारे को दुनिया से तूने लेके जाना था। ये सब क्या है? नाराजगियां, ये रजा नहीं है। आए मेरी शादी ये इस जगह पे क्यों हो गई, सारी जिंदगी से मैं पिस रही। बस तकदीर का फैसला, राजी हो जाए उसके ऊपर, बस यही मेरी तकदीर में लिखा था। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, बेशक हम थे भेजने वाले। किसको? इन अगर हम इससे देखें यो, तो कुरान भी जो हमने एक अमरन का अगर मतलब कुरान लेते हैं तो कुरान के हम थे भेजने वाले, ये हमारी तरफ से और हमने ही भेजा, और दूसरे ये तकदीर के फैसले भी हमने ही नाजिल किए, ये अल्लाह की तरफ से ही है। और फिर रसूल को भी हमने ही भेजा, और ये रहमत मिन रब्बिक, ये रहमत है तेरे रब की तरफ से। वाकई रहमत समझते हैं इस कुरान को? अमरन से माना अगर कुरान लेते हैं, हम दोनों तफसीरों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, आप दोनों को इसमें फिट करके, क्योंकि अभी तो मुझे साथ साथ करना पड़ता है, वरना आप फीहा युफराखो कुल्लु अमरिन हकीम, इसमें अमर से मुराद कुरान लेके फिर सारा कुरान के साथ मतलब आप समझे, फिर उसके बाद तकदीर लें तो सारी उसके साथ मतलब समझे। ठीक है, कि हम फीहा युफराखो कुल्लु अमरिन हकीम, और ये जो कुरान का फैसला है वो हिकमत पे मबनी है, इसमें जो भी फैसले किए जाते हैं, जो भी अहकामात दिए जाते हैं, और ये रहमत है तेरे रब की तरफ से। रहमत कौन नहीं पाना चाहता, हर कोई चाहता है मेरे घर में रहमतें हों, बरकतें हों, मेरी जिंदगी पे अल्लाह की रहमतें हों, तो ये रहमत तो अल्लाह ताला ने तुम्हें दे दी, तेरे रब की तरफ से रहमत है। कौन रहमत को लेना चाहता है? इस कुरान को ले ले, ये अल्लाह ताला अता करता है जिससे भलाई का इरादा करता है। तो अल्लाह ताला ने बंदों के ऊपर बड़ी रहमत की कि ये उतार दिया, बड़ी रहमत की, वरना सारे के सारे आग में ही जलने वाले हो जाते। और ये भी अल्लाह ताला की रहमत है, ये सारे फैसले उसने अपने पास ही रखे, किसी और को नहीं दे दिए वे कि तुम फैसले करो इनके लिए, ये उसने किए। हमारे हाथों में फैसले होते तो हम सब मैसअप करके रख देते, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हाथ में सब फैसले रखे। इन्नहू वस्समीउल अलीम, वो सुनने वाला भी है इल्म वाला भी है, वो तुम्हारी सारी बातों को सुनता है, हर आवाज को सुनता है, तुम क्या कह रहे हो वो बात उस तक पहुंच जाती है, और उसके इल्म में हर बात, दिल में भी जो सोचते हो वो उसके इल्म में है, और उसको पता है कि तुम्हारी भलाई किस में है, वो अल अलीम है, जिसके पास मुकम्मल इल्म है, अधूरा नहीं है, जिसकी बेस पे उसने ये फैसले किए। रब बिस्समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन, वो रब है आसमानों का जमीन का और जो इनके दरमियान है, अगर तुम हो यकीन करने वाले। वो लोग कहते थे कि अब आसमानों जमीन का रब तो अल्लाह ही है, लेकिन अगर तुम्हें वाकई इस बात का यकीन है कि आसमानों वाकई तुम यकीन करते हो, तो फिर तो ला इलाह इल्ला हुआ, तो फिर तो कोई इलाह नहीं है उसके सिवा। क्योंकि जो रब है, रब का माना क्या होता है, ये मैंने बहुत दफा आपको बताया है, तो अब इसको आपने याद रखना है, खालिक मालिक मुदब्बिर। खालिक भी वही है, मालिक भी वही है। इनकी तदबीर, इनकी सारी प्लानिंग, इनकी सस्टेनेंस, इनकी मेंटेनेंस, इनकी जरूरियात को करना, ये सब मुदब्बिर में आता है। सारी तदबीर वही करने वाला है, तो सारे इख्तियारात उसके चलते हैं, आसमान जमीन और इनके दरमियान भी। तो फिर कौन सी जगह रह गई बताएं? आसमानों में जो कुछ है, तो सारे यूनिवर्स आ गया ना, सारे आसमान, सारे आसमान कहा गया, एक आसमान नहीं, ये सिर्फ आसमान है दुनिया नहीं कहा गया, यानी जितनी गैलेक्सीज हैं, जितनी कायनात है, वो सब आसमान ही तो हैं, वो अभी आसमान दुनिया है सिर्फ। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आसमान तो हमने देखा ही नहीं, पाया ही नहीं, ये आसमान दुनिया पे। और आप अगर इस चीज को स्टडी कभी करें तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि इस कायनात में कितना कुछ है। फिर आप सोचेंगे, अल्लाह अगर ये आसमान दुनिया का हाल है तो इससे आगे कितना कुछ होगा जिसका हमें इल्म नहीं। मेरा इल्म बहुत छोटा है और उसी की बुनियाद पे मैं फैसले करती हूँ, और मैं जो चीज समझती हूँ ये ठीक है, हो सकता है वो नहीं ठीक हो। जिस चीज को मैं समझती हूँ ये बुरी है, हो सकता है वो अच्छी हो। जिसको मैं समझती हूँ अच्छी हो सकता है उसमें बुराई हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा इल्म महदूद है। और अल्लाह ताला रब है आसमानों का, जमीन का, और जो उनके दरमियान है, जमीन पे भी जो कुछ है उसका भी रब वही है, दरमियान में उसके जो कुछ है, क्या कुछ है दरमियान में हमें क्या पता। फरिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, जिन्नात आते जाते हैं, और अल्लाह जाने क्या क्या चीजें हैं जिनको हम उनको देख नहीं पाते। कोई एलियंस हो, कोई कुछ हो, हमें क्या पता। हमें तो जिन्नों का भी बता दिया तो हमें पता है, वरना शायद ये भी ना पता होता। अगर तुम यकीन रखने वाले हो, इसलिए कि काफिर यहां तक तो कहते थे, मगर आगे तुम्हारे यकीन को क्या हो जाता है कि फिर कौन है जो इबादत के लायक है, इलाह कौन है? फिर वो ही है जो ला इलाह है ना, ये कलमे का एक हिस्सा है। और इल्ला हुआ, यानी हुआ से मुराद अल्लाह है, इल्लल्लाह यानी ये ला इलाह इल्लल्लाह यहाँ पे कहा गया है, समझ लें, तो ये दूसरा हिस्सा है। जो पहला हिस्सा है वो भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरा हिस्सा जरूरी है। बाज लोग सिर्फ इल्लल्ला 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 इसकी गर्दान करते रहते हैं, कहते हैं बस ये ही पढ़ते जाओ और इससे आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे और आपकी धड़कन बन जाए, इल्लल्ला इल्लल्ला। देखें, जब तक ला इलाहा नहीं कहोगे, वो पहला हिस्सा है, तब तक इल्लल्ला पे नहीं पहुंच सकते। पहले नफी करो कि कोई नहीं है इलाह सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के, ये नहीं, ये मुकम्मल नहीं होता। पहले ला इलाहा कहो, पहले कहो, इनकार करो, शऊर के साथ इनकार करो कि नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, फिर आता है ये। एथीस्ट ला इलाहा कहता है, बस यहीं पे रुक जाता है, वो कहता कोई इलाह है ही नहीं, इल्लल्लाह पे नहीं आता ना। और बाज दफा हम जब तबलीग करने लगते हैं, दावत का जब मैदान हमारे लिए खुलता है, तो हम ये सोचते हैं कि लोगों को इस पे लाना जरूरी है कि वो रब मान ले अल्लाह ताला को, नहीं। और हम ये सोचते हैं कि बस इसने रब मान लिया ना, ये कौन है मालिक, किसने क्रिएट किया, किसने ये आसमान बनाया, किसने जमीन, अच्छा तुमने कह दिया ना वो वन गॉड है, तो बस हमारा काम हो गया, बस तुम मुसलमान हो गए। नहीं, जब तक वो ये नहीं मानता ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह कोई और नहीं है सिवाय अल्लाह के, इलाह पे हम नहीं लेकर आते, हम सिर्फ रब की बात जो है ना उसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं और उसी के ऊपर रोक देते। और मुशरिकी ने मक्का का जो प्रॉब्लम था वो ये नहीं था कि वो रब नहीं मानते थे, वो अल्लाह ताला को मानते नहीं। अक्सर हम डिफाइन कैसे करते हैं, अगर हमसे पूछा जाए मुशरिकी ने मक्का का अकीदा क्या था, आप किसी से पूछ के देते वो अल्लाह को नहीं मानते थे, नहीं ऐसी तो बात नहीं है, कुरान कहता है वो अल्लाह ताला को मानते थे। जब कुरान कहता है उनसे पूछो किसने पैदा किया आसमानों जमीन को, तो वो कहेंगे अल्लाह ने, वो तो अल्लाह ताला को मानते थे और अल्लाह के नाम के साथ उसको मानते थे, अल्लाह कहते थे, आज तो पता नहीं कौन कौन से नाम रखे हुए, लेकिन वो तो बाकायदा अल्लाह कहते थे। फिर भी कुरान ने उनको मुशरिक कहा है, क्या वजह है? तो वो तो कहते थे कि आसमान और जमीन अल्लाह ने बनाए, वो इनका रब है। वो इस पे नहीं आते थे कि इलाह भी अल्लाह है। जब इबादत करने लगते थे, इबादत के अंदर सब चीजें आ जाती हैं, सजदा है, नमाज पढ़ना है, दुआएं करना है, झुकना है किसी के आगे, ये सब मनासे में इबादत है, इबादत के रिचुअल्स हैं, हज है, उमरा है, तब इसके अंदर दूसरों को शरीक कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि वो कहते थे अल्लाह नहीं है, वो कहते थे है, लेकिन तब वो शरीक बना लेते थे। ठीक है, इसलिए उनका अकीदा समझना जरूरी है कि हम ये जब सोच लेते हैं वो तो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखते थे, उसको मानते नहीं थे। तो जब हम कहते हैं मानते नहीं थे, तो शायद हम सोचते हैं कि वो उनको अल्लाह का कोई पता ही नहीं था। नहीं, पता था, और यहाँ पे आके वो डंडी मारते थे। और तभी फिर आप ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम ऐसे काम करते हैं कि जिस वक्त हम कहते तो हैं मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन फिर उसके बाद हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा फरमाया, अल्लाह ताला इनकी तदबीर चलाता है, इनका खालिक है, मालिक है, लेकिन जब झुकना है तो फिर कब्र पे जाके झुकने शुरू हो गए, फिर चादरें वहां चढ़ाने शुरू हो गए, फिर दुआएं उससे करना शुरू हो गए। आप ही हैं हमारे दाता, आप ही हैं हमारे मौला, आप ही हैं, आपकी वजह से ये सारा शहर चल रहा है। एक जगह का सुना, अस्तग़फिरुल्लाह ही रब्बी, उनने कहा ये जो शहर सारा चल रहा है ना, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह इस शिरकिया बात से अल्लाह ताला मेरी पकड़ ना करे, कि ये जो सारा शहर चल रहा है ये दाता साहब की करामत की वजह से चल रहा है, और ये जो शहर पूरा कराची बसा हुआ है ना, ये इन जो वहां के, जिनका नाम भूल गया, कि उनकी मिजार है ना, उन्होंने तूफानों को रोका हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं चढ़ रहे। तो और शिर्क क्या होता है फिर? तो जब इलाह मानना है तो वहां पर ही तो प्रॉब्लम आता है लोगों को। तो ला इलाह इल्ला हुआ युहयी व युमीत, वो जिंदा करता है और वो मौत देता है, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। तब नमरूद ने कहा था कि मैं भी जिंदा और मुर्दा मौत देता हूं। उस बेवकूफ को ये नहीं समझ आई कि पैदा करना और मौत देना वो किसी और सेंस में है। उसने एक कैदी को बुलाया, उसको मौत की सजा हुई थी, उसको छोड़ दिया, एक जाते हुए राहगीर को पकड़ के तो उसको मौत दे दी, लो जी मैं भी मौत और जिंदगी दे। बताओ उस वक्त जिंदगी कौन दे सकता है जब कोई बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हो, उसके प्यारे खड़े में, माँ कह रही है कि मेरी जान इसके अंदर चली जाए और मेरी औलाद बच जाए, मेरा बच्चा बच जाए। बाप कह रहा है मैं दौलत लुटा दूं, अपनी एक एक रुआ में इस पे कुर्बान कर दूं, मेरे बच्चे को जिंदगी मिल जाए। नहीं मिलती। वो जो मरने वाला है वो कहता है कि मैं जितना कुछ है मेरे से ले लो, मुझे चार सांसें और दे दो। नहीं हो पाते। तब पता नहीं चलता कि मौत किसके हाथ में, नहीं पता चलता, नहीं समझ आती। अल्लाह अकबर। और जिंदगी देना, बाज दफा कुछ औरतें होती हैं, वो चाहती हैं कि ये बच्चा गिरा दें, हम हमारे पेट का बच्चा हम गिरा दें और ये ना दुनिया में आए। अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जिंदा रह, जिंदा दुनिया में पैदा हो जाता है। कोई किसी को मारना चाहता है, उसको इतना कोशिश करता है, वो नहीं मरता। लोग छलांग लगा देते हैं ऊपर से, फिर भी बच जाते हैं। इसलिए जिंदगी देने वाला अल्लाह है। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। जी हाँ, जज़ाकअल्लाह खैर। अब्दुल्ला शाह गाजी का मिजार जो है, उन्होंने कहा वो ये है जो कराची शहर को बचाए हुए, ये शिर्क है। तो वो रब तुम्हारा भी है, तुम्हारे आबाओ अजदाद का भी रब वही है। तो यानी रब तौहीद रबूबियत से अल्लाह ताला ने दलील दी तौहीद अलूहियत की। ये मैं पहले भी बहुत दफा बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रब होना, इस चीज को लोग मान लेते हैं, तौहीद अलूहियत को नहीं मानते, कि अलूहियत में इला मानने में भी तौहीद होनी चाहिए। रबूबियत में तो तौहीद है, रब मानने में तो तौहीद होती है, इलाह मानने में तौहीद नहीं रहती लोगों की। ये प्रॉब्लम था मुशरिकी ने मक्का का, और आज के मुशरिक तो इससे भी गए गुजरे हो गए, वो तो तौहीद रबूबियत पे भी नहीं आते। उनका जब उन्होंने कह दिया कि ला इलाह कोई है ही नहीं इलाह, और उन्होंने ये भी ना माना कि एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी उसको देख के, कि उन्होंने सारा मतलब बिलियंस ऑफ ईयर से बताया कि ये कैसे क्रिएट हुई अर्थ और किस तरह से ये सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा पहले ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर उसके बाद कैसे इसके ऊपर लाइफ शुरू हुई। तो मतलब हंसी भी आती थी कि तुम इतनी बातें बिलियंस ऑफ ईयर्स की कर रहे हो, बताओ जरा कि किस सारा कुछ इत्तेफाक से हो गया सब कुछ, और फिर ऐसे हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो सब कुछ खुद ही होता जा रहा था, फिर बंदर बना, फिर बंदर से इंसान बन गया, वो भी सारा खुद, वो आज क्यों नहीं बंदर से इंसान बन रहे, और सारी चीजें खुद ब खुद ही होती चली गई। इंसान की अक्ल मजबूर है ये मानने पे कि कोई है जो बिलियंस, उन्होंने सुभान अल्लाह मतलब इट वॉज अमेजिंग, उन्होंने आई डोंट रिमेम्बर कि 465 बिलियन ईयर्स पहले से स्टार्ट किया कि उस वक्त क्या था इस कायनात में, और उसके बाद अर्थ कैसे फॉर्म हुई, फिर उसके बाद उसके ऊपर चीजें कैसे फॉर्म हुई, तो बड़ी दिलचस्प थी। मगर सारी चीजों में जुबान से एक ही बात निकलती थी, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह, तो सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरी कायनात कब से चल रही है, और ये इत्तेफाक नहीं है, नफी खल्क समावाती वल अर्दी वख्तिलाफ लैली वन नहारी ला आयात लिउलिल अलबाब। वाकई फिर इसमें ये कायनात के चलने में, ये दिन और रात के निजाम में वाकई निशानियां अकल वालों के लिए, कि उनसे वो अल्लाह को पहचान लेते हैं। जितना आप इसके अंदर डेप्थ में जाते हैं, आपको लगता है ये या रब तू है करने वाला, कोई और नहीं ये कर सकता, सुभान अल्लाह, तेरी जात पा के या रब, तुम बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हो और उसके बाद तुम एक एक डिटेल बता रहे हो, फिर अर्थ में ये इर्तिका आया, ये चेंजेस आई, ऐसे हुआ, ऐसे सब ऐसे ही हो गया, या कोई था करने वाला, सब ही इत्तेफाक था, कितने इत्तेफाक होंगे आखिर, एक हो गया, चलो तुम्हारी बात मान ली जाए तो एक हो गया, दो हो गए, मगर शुरू से आखिर तक इत्तेफाकात ही होते रहे, ये कौन मानेगा, कोई बेवकूफ ही होगा जो मानेगा। एक हांडी हम पकाने लगे हैं तो हम कहते, कोई कह दे आपको जी उसके बाद इतना नमक खुद ब खुद गिर गया अंदर, फिर वो मिर्चें ऊपर से आई और फिर वो खुद ब खुद इतनी एक चम्मच ही गिरी, फिर उसके बाद गरम मसाला है वो भी उतना ही गिरा, फिर सब्जी कट के खुद ही अंदर चली गई, फिर उसके बाद वो बनना भी, ये तो ऐसे ही कहने वाली बात है, इसको तो कोई कहता नहीं, एक एक इंग्रेडिएंट उसका मेजर्ड बिल्कुल सही तादाद के अंदर उसके अंदर गया, इसको तो कोई नहीं कहता आज, और कोई कह दे तो उसके ऊपर लोग हंसेंगे, ये पागल है, इतनी सी हांडी तो ऐसे पक नहीं सकती, ये पूरी जमीन कायम हो गई और इसमें लाइफ भी शुरू हो गई इत्तेफाक से ही, और उसके बाद सब चीजें भी यहाँ पे बन गई इत्तेफाक से ही, बल्कि जमीन भी बनी इत्तेफाक से ही, बिग बैंग हुआ और जमीन भी बन गई, अल्लाह अकबर। तो इंसान क्या करे, उसको तो ये इसी को फितरत कहते हैं, कि फितरत फिर बोलती है कि एक खुदा है और लाजमी है कोई, ये साइंस को भी यहाँ पे झुकना पड़ता है, ये लोग जो आज साइंस को खुदा बनाए होते हैं ना, प्रूव करें जी साइंस से, पहले साइंस प्रूव करेगी खुदा का वजूद तो फिर हम मानेंगे, साइंस तो कहती है जो चीज देखो, जो चीज सुने, जो चीज प्रूव हो वो ही है बस, और उसके अलावा कोई चीज को हम मानते ही नहीं, तुम कैसे फिर अल्लाह ताला का वजूद प्रूव करोगे, उसकी निशानियों से प्रूव करेंगे, अल्लाह को देखने से नहीं, उसकी निशानियां प्रूफ है इस बात का, एक है जात जो करने वाली है, जो इससे बाहर है, वो इसके अंदर भी नहीं है, वरना अंदर होती तो इस सारी चेंजेस के अंदर वो भी कहीं बन रही होती, वो इससे बाहर है जो सब कुछ चला रहा है, वही तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। बल हुम फी शक के यलाबून, लेकिन तो ये शक में ही पड़े हुए हैं, इनको समझ ही नहीं आती, और खेल कूद में है, गफलतों में है, खेल जो है ना वो गफलत की निशानी है, इंसान जो खेल कूद करता है वो गफलत है, उतनी देर वो गफलत में ही होता है। तो इनका हाल लोगों का क्या है, कि वो शक में ही है, कौन इला है, जो शिर्क भी कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, इला किसको माने, कभी उसको मान लेते हैं इला, कभी उसको मान ले, कभी उधर जाके सजदे कर रहे हैं, कभी उधर जाके सजदे कर रहे हैं, जो ये इस तरह का शिर्क करते हैं कि कब्रों को पूछते हैं, वो भी कोई एक के साथ थोड़ी है, जिधर चले जाओ वो तो बल्कि लिस्ट बना लेते हैं, जो किसी ने बताया वो लिस्ट बनाते हैं कि आप इस शहर में जा रहे हैं ना, वहां पे कौन कौन से मिजार हैं, आपने उनकी हाजिरी दी कि नहीं, तो अगर तुम्हें इनको ही समझते हो कि यहीं से मेरी मुरादें पूरी होनी है, तो फिर भाई एक के साथ ही जुड़े रहते। तुम्हें तो ये भी यकीन नहीं है, कभी किधर माथा टेक रहे हो, कभी किधर माथा टेक रहे हो।
फरतकब,
तो इंतजार करो फिर, किस दिन का यौम तत्समाउ बिदुखान मुबीन, फिर इंतजार करो उस दिन का जिस दिन क्या होगा, एक खुला धुआं आएगा। ये तो आज अपने शुगल मेलों में मशगूल है ना, कुछ फिक्र नहीं कर रहे और शिर्क के साथ ही राजी हैं। तो फिर उस दिन का इंतजार करें जब ये आपकी बातें नहीं सुन रहे ना है नबी। और फिर वो दिन आ गया था। जी हाँ, इसकी दो तफसीरें की जाती हैं, धुआं से मतलब क्या है। एक तो ये कहा जाता है कि एक धुआं टाइप जो चीज आई थी वो ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, उस वक्त मक्का में बहुत बड़ा कहत आ गया था, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से आया था। आपने बद्दुआ की थी कि या अल्लाह, जिस तरह यूसुफ अलैहि सलाम के जमाने में तूने कहत भेजा था, इसी तरह इनके ऊपर कहत भेज दे। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल की थी और इतनी खुशकसाली हो गई थी, ये हड्डियां और मुर्दार खाना शुरू हो गए थे, और भूख का आलम ये था कि आसमान की तरफ देखते थे, धुआं धुआं नजर आता था, बस कुछ और नहीं नजर आता। यानी भूख की वजह से आंखों में, जैसे अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला ऐसी भूख से भी महफूज रखे, लेकिन इतने उनको चक्कर आते थे ना, ऐसे लगता था कि ऊपर कुछ नहीं है, बस धुआं धुआं ही है। अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। फिर ये लोग आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और इन्होंने इल्तजा की थी कि आप हमारे लिए दुआ करें। ने कहा हम तो हलाक हो जाएंगे, हम आपके रिश्तेदार ही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की तो ये हट गया था। तो एक तो ये कहा जाता है कि इसका मतलब ये है। तो ये कहा गया कि देखो, तो फिर इंतजार करें कि उस दिन फिर क्या हाल होगा जब इनके ऊपर धुआं आ जाएगा खुला। तो वो फिर आ गया था ना इन कुरैश के ऊपर। दूसरी बात कि ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। सहाबा कयामत का जिक्र कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो आपने फरमाया जब तक 10 निशानियां पूरी नहीं होती तुम कयामत नहीं देखोगे। नंबर वन, सूरज का मगरिब से निकलना। नंबर टू, धुआं, याजूज माजूज, ईसा अलैहि सलाम का आना, दज्जाल का आना, मशरक मगरिब और जजीरा अरब में जमीन का धंस जाना। तो ये 3 निशानियां, मशरक में जमीन धंसेगी, सिंक होल जिसको कहते हैं, या क्या, मगरिब में और जजीरा अरब में, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, यानी जब जमीन में धंसना होगा ना, तो लोगों समेत, चीजों समेत, लोगों को अंदर ले जाएगी जमीन, स्वालो कर लेगी उनको। कितनी खौफनाक बात है ये। पॉट होल कभी कभी कहा, एक दफा मैंने न्यूज में सुना कि एक जगह पर उन्होंने कहा कि अल्लाह माफ कर दे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला की पकड़ से इंसान हर बार डरता रहे। एक लड़का सोया हुआ था तो उसके कमरे में पॉट होल हुआ, इस तरह हुआ, बेड समेत वो जमीन के अंदर चला गया। तो सोचें जब वो बड़ा कोई आएगा मशरिक में, ईस्ट वेस्ट और जजीरा अरब में, और आग का आदन से निकल के लोगों को हाँ के एक तरफ ले जाना, जहां ये रात गुजारेंगे और आग भी गुजारेगी, और जब दोपहर को सोएंगे तो आग भी कैलूला करेगी, मुस्लिम की रिवायत। और एक और हदीस में धुएं के, चुका अभी हम धुएं की बात करें, दुखान की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे रब ने तुम्हें 3 चीजों से डराया, धुआं जो मोमिन को जुकाम की तरह लगेगा, बस इतना, मतलब उसके लिए इतना स्वेयर नहीं होगा, और काफिर के तो सारा जिस्म फुला देगा, रुएं रुएं से धुआं उठेगा, और दाब्बतुल अर्द और दज्जाल, ये 3 चीजें हैं जो तुम्हारा रब तुम्हें इनसे डराता है। यानी कितनी स्वेयर होंगी, हम तो एक कोविड को ही लेके परेशान रहे कि हाय कोविड आ गया, तो पता नहीं कितनी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई, पूरी दुनिया ही रुक के रह गई। सोचें अब ये धुआं कैसा होगा जो सारी दुनिया के ऊपर छाएगा, और दाब्बतुल अर्द और दज्जाल, इनसे अल्लाह ताला डराता है तुम्हें। दज्जाल भी खौफनाक चीज ही है। और दूसरी हदीस में भी यही इसी तरह आता है कि धुआं फैल जाएगा, मोमिन को तो जुकाम की तरह होगा, कॉमन कोल्ड जैसे होता है, लेकिन काफिर के जोड़ जोड़ से निकलेगा, इतना स्वेयर होगा उसके लिए। अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये धुआं हर तरफ छा जाएगा, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जो इससे बाकी रह जाए। अब कहने में इंसान सोचता धुआं ही होगा ना, तो क्या हो? नहीं, आप देखें धुआं जब हो जाता है, आप देखते हैं ना जब वो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, जब आग कहीं लगती है और उसका धुआं होता है, तो कैसे इंसान चोक करने लगता है, कैसे इंसान को ऐसे लगता है कि ये मेरी सांस बंद हो जाएगी, तो वो कितना खौफनाक होगा, काफिर के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक होगा। तो ये दो चीजें हैं जो दुखान से मुराद ली गई हैं। तो एक चीज गुजर चुकी है जो मुशरिकी ने मक्का पे आया, और दूसरी चीज ये जो आएगी जो कयामत की एक निशानी होगी, तो उनको उससे भी डराया जा रहा है। और फिर रहती दुनिया तक लोगों को इससे डराया गया कि अपने आप को फिक्स कर लो, अगर नहीं फिक्स करते तो फिर इंतजार करो कयामत की इस निशानी का कि जो आ जाएगी जब, तो यक्षन्नास ढांप लेगी लोगों को, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, कि छा जाएगा ये इंसानों के ऊपर, यानी हर एक को पहुंचेगा, सबको कवर कर देगा। गशी जो होती है, जैसे गशी भी छा जाती है ना, तो ये ढांप लेगा धुआं। और वो क्या कहेंगे लोग उस वक्त, हाजा अज़ाबुन अलीम, तो लोग कहेंगे ये बड़ा दर्दनाक अजाब है, ये तो बड़ा मुश्किल वक्त है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आपने एक ही अल्लाह ताला ने जरा सा वो कोविड भेजा तो ऐसे लगता था कि दुनिया खत्म होके रह गई है, कुछ बाकी नहीं रहा। लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए, कितनी जहनी बीमारियों के शिकार हो गए, क्राइम में ज्यादा इजाफा हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ, दुनिया ही बदल गई। एक एक बीमारी, एक सिर्फ वायरस था, और अल्लाह अकबर, जब ये सारी दुनिया को लपेटेगा तो अब हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल नहीं है। जब हमने कोविड को देख लिया ना, कैसे वो पूरी दुनिया पे ही फैल गया, कोई मुल्क ही नहीं बचा। इसी तरह अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है, धुआं सारी दुनिया को लपेट में ले ले। पता नहीं, शायद कोई बाहर से ही आए धुआं, वल्लाहु आलम कैसे आएगा वो, लेकिन ये कयामत की एक निशानी है।